Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Jagannath
Hare Krishna आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आज हमारे बीच में बहुत ही विशेष वक्ता हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु हरि बोल। राधे श्याम प्रभु लगभग 2 साल के बाद आ रहे हैं और हम बहुत इनके प्रति कृतज्ञ हैं। प्रभु जी यहाँ पे कुछ यूथ फोरम के लड़कों को लेके आए थे ऋषिकेश और हरिद्वार के कैंप में और फिर उन्होंने अपने आप को एक्सटेंड किया और यहाँ पे हमें अपना संग देने के लिए आए हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आने से बहुत से लोग प्रभु जी के बारे में जानते होंगे, फिर भी एक संक्षिप्त परिचय। इस गेस राधे श्याम प्रभु ने इस कौन आंदोलन ज्वाइन किया 1991 में मुंबई चौपाटी में, उसके बाद 97 में इनको एक विशेष उत्तरदायित्व दिया गया, विशेष बड़ी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कौन पुणे के अध्यक्ष के रूप में। पिछले लगभग 27-28 सालों में जो प्रभु जी का प्रभुपा जी के इस मिशन में जो योगदान है वो अगणनीय है, बहुत से सुंदर सुंदर योगदान किए। विशेषकर तो पिछले 20 वर्षों में हम देखते हैं पूरे भारतवर्ष में यूथ प्रीचिंग में जो क्रांति आई है इसका पूरा श्रेय हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु को जाता है। और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर किताबें लिखी हैं यूथ प्रीचिंग के लिए और आप सबने पढ़ी होंगी आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल स्ट्रेस मैनेजमेंट और एक बुक है एसेंस ऑफ भगवद गीता। कितने भक्तों ने पुस्तक लिखी है एसेंस ऑफ भगवद गीता? इसी पुस्तक से पूरे आज विश्व भर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनके इस योगदान के कारण 2004 में इस्कॉन के द्वारा इनको ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिला फॉर यूथ प्रीचिंग। और इसके साथ साथ प्रभु जी भौतिक दृष्टि से देखे जाए इज एन एमटेक फ्रॉम आईआईटी मुंबई और बहुत सी प्रीचिंग कर रहे हैं। जितने भी भारतवर्ष में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं अपने इन्होंने सब भक्तों को प्रशिक्षित करके वहां भेजा है प्रचार के लिए और साथ साथ कॉर्पोरेट सेक्टर ने बहुत सुंदर सेमिनार्स करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट ब्लिसफुल लिविंग एक्सेट्रा पे प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित। और साथ ही साथ में प्रभु जी बहुत विश्वास रखते हैं ट्रेनिंग के लिए, इज वेरी बिग हार्टेड काइंड हार्टेड मैग्नानिमस, कोई भी इनको अप्रोच करता है प्रभु जी एक्सटेंड करते हैं अपने आप को प्रशिक्षण देने के लिए। और पिछले 2 वर्षों में इस्कॉन वाडा में आप देखे होंगे जो मुंबई में है वहाँ भागवत पीठ को भागवत विद्यापीठ का जो कोर्स है 2 साल का फुल टाइम प्रभु जी वहाँ पे रहे और भागवतम को बहुत विस्तार में उन्होंने अध्ययन किया और अब पूरे भारतवर्ष में प्रभु जी वितरण भ्रमण करते हैं इस भागवत के संदेश का वितरण करते हुए। सो वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट एंड ग्रेटफुल टू हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु फॉर कमिंग ओवर हियर एंड गिविंग अस हिज वंडरफुल एसोसिएशन। तो मैं सब भक्तों से निवेदन करूंगा कृपया करके अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दें, साइलेंट कर दें ताकि हम पूरा एसोसिएशन का लाभ उठा सकें। आज द्वादशी का दिन है, व्रत पालन का समय 8:30 के बाद से है, चिंता मत कीजिए, सबके लिए प्रचुर प्रसाद की मात्रा रहेगी। पूरे कंसंट्रेशन के साथ संदेश सुनिए। हरे कृष्ण।
ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं पर्यनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः सो द सेकंड श्लोक इज इट सो 13वां श्लोक पढ़ लेते हैं उसके बाद 14वां श्लोक पर जाएंगे 13वां श्लोक का तात्पर्य नहीं है फिर भी एक श्लोक पढ़ लेते हैं मेघा मृदंग पणव मुरजानक गो मुखान गणादयन शंख वेणु वीणास्तुमल निस्वनान द क्लाउड्स इन पर्सोनिफाइड फॉर्म बेट वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रम्स known as mridangas, panavas, murajas, anakas. They also blew conch shells and bugles known as gomukhas and played flutes and stringed instruments. The combined sound of these instruments was tumultuous. Aur abhi aaj ka shlok hai, 14वां shlok. Tato vishishichur devim श्रियं पद्मकरां सतीं जिगीभाः पूर्णकलशैः सूक्तवाक्यैर्विजेरितैः इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार है तत्पश्चात सभी दिशाओं के दिग्गज गंगा जल से भरे कलश से ले आए और भाग्य की देवी को विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों के साथ स्नान कराया स्नान कराए जाते समय लक्ष्मी जी अपनी मौलिक शैली को बनाए रखकर अपने हाथ में कमल धारण किए रही और अत्यंत सुंदर लग रही थी वे परम सती साध्वी हैं क्योंकि वे भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की इस श्लोक में लक्ष्मी जी को श्रियम कहा गया है जिसका अर्थ है कि वे षड ऐश्वर्यों धन बल प्रभाव सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त हैं ये सारे ऐश्वर्य लक्ष्मी जी से प्राप्त किए जाते हैं लक्ष्मी की यहाँ पर देवी कहा गया है क्योंकि वे वैकुंठ लोक में भगवान तथा उनके भक्तों को सारे ऐश्वर्य प्रदान करती हैं जिससे वे लोग वहां का प्राकृतिक जीवन बिताते हैं। भगवान अपनी प्रिया लक्ष्मी जी से प्रसन्न रहते हैं, जो हाथ में कमल धारण किए रहती हैं। इस श्लोक में माता लक्ष्मी को परम साध्वी सती कहा गया है, क्योंकि वे भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की ओर ध्यान नहीं देती। मैं और कुछ ब्रह्मचारी भक्तों के साथ हम लोग हरिद्वार और ऋषिकेश में यात्रा के लिए गए थे, और यात्रा होकर अभी रिटर्न आते समय हमने सोचा दिल्ली तो उतना दूर नहीं है, तो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु और मुरली कृष्ण प्रभु और बाकी भक्तों को मिलकर जाए सोचकर हम सिर्फ एक सुबह के लिए आए, अभी दोपहर को निकल रहे हैं इधर से। लेकिन आप भक्तों की संख्या को देख कर मुझे लग रहा है कि इधर के भक्तों का भक्ति तीव्रता, भक्ति की तीव्रता और प्रचार बहुत बढ़िया तरह से हो रहा है। नहीं तो जैसे उदाहरण दिया जाता है, अगर एक पेड़ में मीठे मीठे फल हो तो रंग बिरंगे पंछियां कहीं कहीं से भी आ जाते हैं आकर मीठे फलों को खाने के लिए, और उस पंछी को छोड़ते ही नहीं है। छोड़ते भी हो तो इसलिए छोड़ते हैं कि जाकर और पंछियों को उठा कर लेके आते हैं, और इस तरह संख्या बढ़ता जाता है। तो इस तरह ये आप लोगों का समस्या जो है मंदिर की हाल छोटा पड़ना, ये अच्छा समस्या है। इसलिए भी रोहिणी मंदिर भी तैयार हो गया सुना मैंने उधर पे। तो इस तरह है, एक बार परम पूज्य गोपाक्ष महाराज ने बोला था मुझे, तुम पंजाबी भाग जा रहे हो तो उधर से रोहिणी भी जाकर देखना चाहिए। तो उस समय तो सिर्फ जमीन था उधर, कुछ बना नहीं था, लेकिन अभी वो भी मंदिर रेडी हो गया सुना मैंने। तो श्रीमान रुक्मिणी कृष्ण प्रभु और उनके भक्तों की टीम मंदिर में और कांग्रीगेशन में भी, आप लोग बहुत सालों से भगवान राधा राधिका रमण और कृष्ण बलराम जी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा इनकी दिव्य आनंद के लिए, खुशी के लिए भक्ति करते आए हैं, और आपकी भक्ति की प्रामाणिकता और गंभीरता देखकर भगवान आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। कृष्ण का स्वभाव ही ऐसा है कि जिधर भी कृष्ण को डालो वो हमेशा एक्सपैंड होते रहते हैं। ऐसा बोला जाता है कि कृष्ण बाकी देवता ही नहीं, कृष्ण भी अपने बारे में सोचकर आश्चर्य करते हैं कि इतना उनके शक्तियां एक्सपैंड होते हैं। देखेंगे प्रभुपाद जी ने कृष्ण को डाला न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, उधर से लॉस एंजलिस, उधर से लंदन, सारे दुनिया में कृष्ण फैल गए ऐसे। इस तरह जिधर भी कृष्ण की भक्ति तीव्रता से किया जाता है उधर भक्ति का वर्धन होता है, भक्तों का संख्या बढ़ता है, और भगवान और भक्त दोनों को आनंद का अनुभव होता है। कभी कभी भक्तों का संख्या घटता जाता है, और अगर ठीक तरह से पूजा आराधना नहीं होता है तो उधर भक्ति की कमजोरी है। इधर बहुत अच्छा है इधर कि आप लोग साथ में आकर इस तरह अच्छी तरह भक्ति कर रहे हैं। मैं वैसे तो साल में एक बार दिल्ली आने के लिए मुझे मौका मिलता है किसी न किसी कारणवश, तो मानता हूँ कि पंजाबी बाग मंदिर में इधर आकर आप भक्तों को देखकर मेरे भक्ति में और उत्साह बढ़ाने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आज की विषय जो हम चर्चा कर रहे हैं इधर, ये प्रसंग ऐसा है, समुद्र मंथन लीला के बीच में ये लीला आता है कि रमा नाम के एक लक्ष्मी आती है, आपने सुना होगा, इसके पहले भी कुछ इस तरह ये प्रसंग आता है। और ये प्रसंग क्यों रखा गया है इसके बीच में, इधर बताया जा रहा है कि उस लक्ष्मी की अभिषेक किया गया। जैसे आपने भारत में कुछ स्कल्पचर में शिल्प में देखा होगा कि लक्ष्मी बैठी है और उनकी दोनों बाजू में दो हाथी ऐसे पानी का वर्षा कर रहे हैं, उनके ऊपर अभिषेक कर रहे हैं, आपने देखा होगा ऐसे। इधर भी इस तरह ऋषि मुनि लोग माता लक्ष्मी की अभिषेक कर रहे हैं गंगा जल लेकर, और इधर लक्ष्मी की गुणगान किया जा रहा है उनके संबंध में। अब आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे आप, वो ये सब होने के बाद वो ढूंढेगी मेरे हाथ में जो हार है इसको किसको पहनाना है। तो आप बोलेंगे कि इनके बारे में बातचीत चल रहा है इधर की, लक्ष्मी जी सती है, अपने पति नारायण को छोड़कर वो किसी को और मुड़कर देखती नहीं, तो ऐसा बताया जा रहा है इधर। तो पति की ढूंढने की बात क्यों आता है, तो चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है कि वो सिर्फ एक बहाना है। किसके लिए, वो घोषणा करना चाहती है कि इस दुनिया में भगवान नारायण नहीं तो भगवान विष्णु के बराबर कोई अनवद्य आत्मा नहीं है। अनवद्य का मतलब है जिनमें किसी भी तरह का त्रुटि नहीं है, दोष नहीं है। इस तरह से दुनिया को समझाने के लिए एक लीला कर रही है, असली में ढूंढ नहीं रही है किसी और को, उनको पहले से मालूम है। वो क्रिटिसाइज भी करती है तीन श्लोकों में, वो बोलती है, आलोचन करती है वो तीन श्लोकों में, बोलती है इस तरह दुर्वास मुनि देखो कितना शक्ति है, आसमान में उड़ सकता है, पानी में चल सकता है, इस तरह कहीं भी जा सकता है, इतना तक कि वो वैकुंठ तक भी पहुंच गया। कुछ कुछ भक्तों के मन में शंका होता है, अरे दुर्वास मुनि तो शुद्ध भक्त नहीं थे, प्रेम उनके हृदय में जागृत नहीं हुआ था भगवान के लिए, वो कैसे पहुंच गए वैकुंठ में, कुछ तो गलत ही दिख रहा है इधर। हमने सुना है कि वैकुंठ के अंदर प्रवेश करने के लिए तो भावना चाहिए, सही भावना, वो कैसे पहुंच गए। तो भागवत में कुछ गलत चीज नहीं दिया गया है, सही चीज ही दिया है। देखिए कभी कभी आल्टर के अंदर पेंट करना हो तो कुछ लोगों को हम अंदर छोड़ते हैं पेंट करने के लिए, मतलब नहीं कि वो शुद्ध भक्त है ना, इसका मतलब नहीं कि वो शुद्ध भक्त हो गए हैं, ऐसा नहीं कि वो लोगों ने ब्राह्मण दीक्षा लिया है। वो लोगों को एक अक्षर भी मालूम नहीं भक्ति में, सिर्फ फिर भी उनको छोड़ते हैं आल्टर में, क्योंकि कभी भगवान का काम करना हो इस तरह हम उनको पेंटिंग के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए अंदर छोड़ते हैं। इस तरह दुर्वास मुनि को भी भगवान ने अंदर छोड़ा है इस दुनिया को सिखाने के लिए कि शुद्ध भक्त की महत्ता सिखाने के लिए। अम्बरीश महाराज कितने महान भक्त हैं, वो सिखाने के लिए भगवान ने इस लीला में दुर्वास मुनि को छोड़ा अंदर ऐसे। तो इस तरह हम देखते हैं कि वो बोलती है कि दुर्वास मुनि बड़े ऋषि हैं, बड़े योगी हैं, फिर भी क्या अपनी तपस्या का अहंकार है जिसके कारण उतने छोटे चीज के लिए इतना बड़ा क्रोध प्रकट किया उन्होंने अम्बरीश महाराज के प्रसंग में। इस तरह लक्ष्मी जी अलग अलग लोगों का नाम लेती है और उनको कोसती है कि उनके अंदर क्या लक्षण नहीं है। देखिए 11वें स्कंद के 28वां अध्याय के एक और दो श्लोक आप पढ़ेंगे, उधर एक परम रहस्य बताया गया है। 11:28:1-2 आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है अगर आप वो दो श्लोकों को पढ़ेंगे तो। उसमें बताया गया है, पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति यह निंदति स आशु प्रश्यते स्वार्थात् असत्य विनिवेशतः। इसमें बोला गया कि इस दुनिया में रहते समय आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के कर्म और उनके स्वभाव इसके बारे में आलोचन विवेचन मत करो, ऐसे करने से तुम्हारे चित्त असत पदार्थों में अभिनिवेश हो जाएगा, अभिनिविष्ट हो जाएगा। अगर अभिनिविष्ट हो गया तो परम सत्य भगवान की भगवान को प्राप्त करना आपको कठिन चलेगा, क्योंकि हम इस दुनियादारी चीजों में हम अभिनिविष्ट हो जाएंगे। इस तरह बताया है। अभी उदाहरण के लिए कोई तो एक डिवोटी, उसका तबीयत ठीक नहीं था, वो लेटा था सिक रूम हेल्थ रूम कमरे में ऐसे। दूसरे भक्त आए उसको मिलने के लिए, पूछा कि प्रभु जी मैंने सुना कि आपका तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे आपको मिलकर जाने के लिए आया, थोड़ा आराम करिए सब ठीक हो जाएगा, दवाई लिया ना आपने? वो बोला हाँ जी दवाई ले लिया, आयुर्वेदिक दवाई ले लिया है मैंने। वो बोला आयुर्वेदिक लिया? आयुर्वेदिक तो बहुत धीमी से काम करता है, आपको एलोपैथी लेना चाहिए। और वो बोला क्या एलोपैथी, एलोपैथी कुछ काम का नहीं, वो सब विष है, पॉइजन है एलोपैथी, इतना साइड इफेक्ट तैयार करता है, हम तो आयुर्वेदिक लेते हैं क्योंकि धन्वंतरी जी ने खुद ही दिया है, ऐसे बोला उन्होंने। तो ये बोला अरे ऐसा सोच रहे हो कि आयुर्वेदिक दवाइयों को धन्वंतरी ने दिया, तो एलोपैथी की दवाई भी कुछ तो पदार्थों से बनाया जाता है जो भगवान से ही निकले हैं, अंत तो गत्वा देखा जाए तो, क्योंकि भगवान बोलते हैं हम सर्व से प्रभु हो, उसमें एलोपैथी टैबलेट भी है उसमें, ऐसे बोले। तो दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो गया उनका, इतना बड़ा है जो वो बैठ गए वो सिख डिवोटी है। और अभी दोनों को निरूपण करना था कि आयुर्वेदिक श्रेष्ठ है एलोपैथी श्रेष्ठ है, इतने में वो मंदिर के कोई तो सीनियर डिवोटी आए, तो ये सिख डिवोटी ने बोला प्रभु जी मैं आराम से सो रहा था, उन्होंने उठा दिया मुझे, इतना बड़ा युद्ध हो गया। तो युद्ध का कारण क्या है, इस युद्ध का देखिए, इस दुनिया में हम लोग भौतिक चीजों को पकड़कर ये श्रेष्ठ है ये बुरा है ये गुड लक है बैड लक है इसे हम बोलते हैं। इस तरह बोलने से क्या होता है, हम इस दुनियादारी चीजों में हमारे मन प्रविष्ट होकर अग्निविष्ट हो जाता है। जैसे ऐसे हमने कहानी सुना बहुत समय के पहले, मेरे गुरु महाराज बता रहे थे कि एक बार एक घोड़ा आ गया किसी के कंपाउंड में, अपने आप आ गया, तो उसके पड़ोस ने बोला कि अरे तुम कितना भाग्यशाली हो, ये घोड़ा अपने आप आ गया, तुमको गुड लक हो गया तुम्हारा। लेकिन वो मालिक ने बोला कि क्या गुड लक, भगवान की इच्छा, ऐसे बोलता था वो हमेशा। तो कुछ दिनों के बाद वो घोड़े को लेकर उस मालिक का बेटा इधर उधर घूमता था, गाँवता था, करता था, ऐसे जाते समय उधर घोड़े से एकदम तेजी से भागने लगा घोड़ा, नीचे गिरकर उसका टांग टूट गया। तो उसको मलम पट्टी वगैरह लगाकर वो ऐसे बिस्तर में लेटा था, तो पड़ोस व्यक्ति आया बोला कि देखिए आपका बैड लक हो गया आपको, अगर ये घोड़ा नहीं आता तो कितना अच्छा रहता, आपके बेटे का पांव ठीक रहता था। वो बोला देखो भगवान की इच्छा मर्जी क्या है हमको मालूम नहीं, गुड लक हो बैड लक हो भगवान की इच्छा के अनुसार ही सब चलते हैं बोला। कुछ दिनों के बाद मिलिट्री लोग आ गए घर घर में, बोला कि आपके बेटों को दे दो, युद्ध के लिए हमको तरुण व्यक्ति चाहिए। तो इनके घर में आए, बोले कि इसका तो फ्रैक्चर हुआ है, इसको लेकर हम क्या करेंगे, कुछ काम का नहीं, उसको छोड़ दिया। तो अगले पड़ोस के बेटे को लेके गया वो लोग, तो पड़ोस आकर बोला कि अच्छा है कि तुम्हारे बेटे का फ्रैक्चर हुआ, लगता है कि इसका गुड लक है, नहीं तो उसको भी युद्ध के लिए जाना पड़ा होगा, जैसे मेरे बेटे को भेजना पड़ा मुझे, ऐसे बोला। वो बोला ठीक है मान लो कि गुड लक है, लेकिन भगवान जो करते हैं वो सोच विचार कर ही करते हैं, ऐसे बोला उन्होंने। तो उसके बाद जो इसके पास घोड़ा था वो चला गया वो कहीं, तो पड़ोस आया, अरे आपके बेटे का तो गुड लक है लेकिन ये घोड़ा चला गया तो तुम्हारा बैड लक है, अपने आप आया था चला गया। तो आदमी बोला कि अरे घोड़ा तो मेरा नहीं था पहले, अपने आप आया अपने आप चले गया, ये भगवान की मर्जी, ऐसे बोला उसने। लेकिन अगले दिन वो घोड़ा, वो तो ही घोड़ा था, शी घोड़ा को लेके आया वो अपने साथ, अपने फ्रेंड को भी लेके आया वो। अभी दो घोड़े आ गए इसके पास, तो पड़ोस आकर बोला कि अरे तुम्हारा वापस गुड लक आ गया तुम्हारा, अभी देखो। तो ये बोला कि अरे तुम पड़ोस में रहते हो ये आकर मेरा टाइम काते हो आकर गुड लक बैड लक की बात करते हो, ये वो एक माला उठा कर दिया, ले लो माला जप करो नाम जपो, भगवान का चिंतन करो, इस दुनियादारी चीज में मत पड़ो, बोला हुआ। इस तरह हम लोग इस दुनिया में हर दिन बातचीत करते हैं गुड लक बैड लक के बारे में, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं उनको मालूम है किस व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए, किस टाइम पे करना चाहिए, भगवान को अच्छी तरह मालूम है। कभी कभी हमारा अहंकार बढ़ जाता है तो भगवान अहंकार को कम करने के लिए कुछ दंड देते हैं। कभी हम नम्र बनते हैं, भगवान सोचते हैं कि नम्र है इसको कुछ मौका दिया जाए भगवान की काम करने के लिए, उन हमारे द्वारा कुछ करवाएंगे भगवान ऐसे काम। लेकिन भगवान भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब कुछ जानते हैं भगवान। इसलिए जो व्यक्ति भगवान के ऊपर निर्भर है वो इतना ही देखता है कि इस भौतिक दुनिया में एक भौतिक चीज को दूसरी भौतिक चीज से तुलना नहीं करता। जैसे एक बार मैंने प्रवचन में पूछा भक्तों को, देखिए सी क्लास जेल में अगर आप रहेंगे तो आपको मच्छर काटेगा और सुबह नहाने के लिए ठंडा पानी देंगे आपको, रात को सोते समय कुछ ब्लैंकेट वगैरह नहीं मिलेगा आपको, जमीन में सोना पड़ेगा, और भोजन भी वेरी सिंपल चपाती सब्जी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको राइस दाल सब्जी के बिना। सी क्लास जेल, ए क्लास जेल जाओ आपको चपाती सब्जी मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा आपको, सब अच्छा सुविधा है, सोने के लिए मस्कीटो नेट में मिलेगा आपको। तो आप कितने लोगों को ए क्लास जेल चाहिए, सी क्लास जेल नहीं चाहिए, लगभग 90% लोग हाथ ऊपर गया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे विद्यार्थियों का एक प्रोग्राम का। तो मैंने दूसरे लोगों को पूछा कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, उसमें से एक व्यक्ति हाथ ऊपर उठाकर बोला कि प्रभु जी हम जेल में ही नहीं जाना चाहते हैं, एक क्लास जेल में क्यों जाएंगे, जेल जाना ही अच्छा नहीं है, वो बुद्धिमान था, बोल दिया सही ढंग से। इस तरह भगवान सर ठाकुर बोलते हैं कि जो जेल के अंदर है जेल के बाहर है उनको तुलना करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सी क्लास जेल ए क्लास जेल को तुलना करना चाहिए। इस तरह इस दुनिया में हम लोग कौन धनी है, कौन गरीब है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन बुद्धिमान है, कौन बेवकूफ है, इस तरह अगर हम दुनिया में लोगों के बीच में मतभेद, लोगों के बीच में भेद करके हम इस तरह देखते रहेंगे, हमारा बहुत समय चला जाएगा इस दुनिया में, क्योंकि हम कमेंट मारते रहेंगे उसमें बहुत समय चला जाता है। वो उदाहरण देते हैं, ये जो सुअर जो होता है कभी कभी उनके बीच में भी मीटिंग होता है, सुअर पूछते हैं आज का कैसे मिला विष्टा, तो सुअर बोलता है कि आज थोड़ा सूखा मिला अच्छा नहीं, कल हमको गीला मिला बहुत अच्छा है, इस तरह बातचीत करता है। तो विष्टा ही अशुद्ध चीज है, उसमें गीला और सूखा की बात क्या। इस तरह बक्सा ठाकुर बोलते हैं कि इस दुनिया में श्रेष्ठ और निम्न चीजों के बारे में बात ना करते हुए हमको परलोक ब्रह्म भगवान के संबंध में बातचीत करना उचित है। क्यों? क्योंकि विषयाविष्ट चित्तानाम विष्णुर आवेश न भवेत, ऐसे शास्त्र बोलते हैं। अगर हम विषयाविष्ट हो जाएंगे हमारे चित्त विष्णु में आविष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हम आविष्ट चेता न भवाय कल्पते, ऐसे एक श्लोक है भागवत में, व्हाट इज दैट वर्स, श्रृण्वन् गृणन् संस्मरयन् च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरण अरविन्दयोर् आविष्टचेता न भवाय कल्पते। आविष्टचेता, विष्णु में आविष्ट हो गया हमारा मन, न भवाय कल्पते, इस दुनिया में भवसागर को हमें बार बार लौटना नहीं पड़ेगा, ऐसे बताते हैं। इसलिए हम लोगों में त्रुटियां नहीं देखना चाहिए। कभी कभी हम बोलते हैं कि ये स्ट्रिक्ट भक्त है, ये लिबरल भक्त है, लेकिन आप देखेंगे स्ट्रिक्ट भक्त भी कुछ कुछ विषयों में लिबरल है, लिबरल भक्त भी कुछ कुछ विषयों में स्ट्रिक्ट है, आप देखेंगे इस तरह देखा जाएगा, आप देखेंगे। इस तरह कुछ भक्त बोलते हैं यह भक्त के अंदर मिशनरी स्पिरिट है इस तरह, और वो भक्त सिर्फ सस्टेनेंस करते हैं। सस्टेनेंस का मतलब क्या है, ये जो भी है उसको संभालते रहना, बस बच्चों को खुशी रखना, संभालते रहना, वो सस्टेनेंस, केयर, ख्याल रखना, ये सस्टेनेंस है। मिशनरी स्पिरिट का मतलब है बाहर जाना, दुनिया के लोगों को जोड़ना। इस तरह भक्तों के बीच में कभी कभी मतभेद होता है, झगड़ा होता है। एक भक्त बोलता है कि अरे प्रभुपाद जी ने बोला प्रचार करो, किताब वितरण करो, बाहर जाओ, ढीला मत पड़ो भक्ति में। दूसरा बोलेगा कि प्रभुपाद ने बोला बॉइल द मिल्क बोला 1972 में, ऐसे कच्चा आम को पक्का करो, दूध जो है उससे रबड़ी बनाओ, ऐसे प्रभुपाद जी ने बोला। जिसका मतलब है जो है तुम्हारे पास भक्त उनको पक्के भक्त बनाओ, कच्चे भक्तों को पक्के भक्त बनाओ। तो कुछ लोग उसमें ध्यान दे रहे हैं और कुछ लोग मिशनरी स्पिरिट को अपना कर बाहर जाकर। ये दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? मिशनरी स्पिरिट श्रेष्ठ है नहीं तो सस्टेनेंस श्रेष्ठ है, क्या बोलेंगे आप? हाँ, दोनों चाहिए, दोनों के लिए समय देना चाहिए, करेक्ट है ना? हमें स्ट्रिक्ट भक्त रहना चाहिए, हमें लिबरल भक्त होना चाहिए। एक्चुअली लिबरल का मतलब क्या है आप देखेंगे, देश काल पात्र के अनुसार हमें करना चाहिए जो भी हम करते हैं। हाँ, देश काल पात्र के अनुसार। एक बार हमारे मंदिर में 1 बजे दर्शन बंद होता है, तो कहें तो गांव से माता बूढ़े, एक बूढ़ा व्यक्ति, उसकी बूढ़ी पत्नी और उनके दो तीन बेटे और उनकी पत्नी और बच्चे, लगभग सब मिलाकर 15-20 लोग, कुछ जॉइंट फैमिली, वो लोग आ पहुंचे मंदिर के हाल में। वो लोगों को पता चला कि 1 बजे दर्शन बंद होता है, सो भागते दौड़ते हुए ऊपर चढ़कर मंदिर के हाल में जाकर पाँव डाला 1 बजे, डिंग 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 बेल बजाकर वो ये कर रहा था, वो हमारे पुजारी बंद कर रहा था आल्टर को। तो वो लोग भाग रहे थे आल्टर की ओर, सिर्फ उन्होंने इतना ही देखा कि पुजारी ने बंद कर दिया, भगवान का दर्शन नहीं मिला। वो लोग इतने इच्छा था, आतुर थे कि वो रोने लगे, वो खास करके स्त्रियां रोने लगे, इस तरह शायद भगवान हमसे नाखुश हैं, इस तरह दर्शन देना नहीं चाहते भगवान, अपने आप को भगवान ने बंद कर लिया इस तरह। तो एक भक्त जाकर पुजारी को बोला कि प्रभु जी अब भी आए हैं ये लोग, थोड़ा बंद करने के पहले आना था लेकिन थोड़ा अभी भी आए हैं, सिर्फ थोड़ा दिखा दो दर्शन। वो बोला कि नहीं 4:30 उनको वेट करना पड़ेगा, अभी वो लोग दूर गांव से आए थे। तो मैं जाकर विनती किया पुजारी को, अरे थोड़ा दर्शन दिखा दो इनको भगवान की चेहरे को एक बार देख लिया तो बस खुशी से जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा खोला दरवाजा, क्योंकि अगर 1:30 होता तो हम खोल नहीं पाएंगे। अगर आधा घंटा बीत गया तो भगवान को सुला दिया, हम उठा नहीं पाएंगे भगवान को। और अभी अभी बंद हो रहा है लेकिन पुजारी को भी थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए, उसको देखना चाहिए कुछ लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, तो थोड़ा थोड़ा खोल कर रख सकते हैं दरवाजा, तो भक्त लोग दर्शन लेने के बाद बंद करना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको, संवेदनशील बोलते हैं उसको, संवेदनशील होना चाहिए भक्त को भी, क्योंकि हमारे इस्कॉन मंदिर हैं, इसलिए हमने खोला है भक्तों को चांस देने के लिए भगवान की दर्शन लेने के लिए, कीर्तन में, नृत्य में, प्रसाद पाने में, ये सब भाग लेने के लिए मौका हम देते हैं। तो इस तरह स्ट्रिक्ट होना भी आवश्यक है। अगर कोई 2 बजे आकर बोलता है दर्शन को लो तो हम खोल नहीं पाएंगे, वो बोले है मैं पॉलिटिशियन को बोल दूंगा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, अभी फोन कर दूंगा उसको, डराते हैं ऐसे। तो हमारे भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी ये मंदिर का विधि है, हमने लिखा है टाइमिंग भी, आप बुरा मत मानिए, प्रेम से समझा कर उनको वेट कराते हैं 4:30 तक, उनको प्रसाद खिला कर ऐसे। तो बोलने का मतलब क्या है, देश काल पात्र के अनुसार हमें निर्णय लेना होगा, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए हमें ऐसे। इसलिए ऐसा नहीं कि किसी भी भक्तों को हम लेबल कर सकते हैं कि ये लिबरल भक्त है, ये स्ट्रिक्ट भक्त है, ये मिशनरी स्पिरिट भक्त है, ये सस्टेंस ऐसे भक्त है, इस तरह हम लोगों को हम लेबल करते हैं। तो लेबल करने से क्या होता है, हम फैनाटिक हो जाते हैं, मालूम है ना आपको, फैनाटिक क्या बोलते हैं हिंदी में, कट्टरवादी हो जाते हैं। कट्टरवादी होने से क्या होता है, हम भक्तों के इसके ऊपर ये लिख देते हैं है? ये ऐसा भक्त है, फलाना फलाना भक्त जो है ना ऐसा भक्त है वो है, लेकिन वो भक्त 4-5 साल के बाद बदल जाता है वो, क्योंकि उसको भी बुरे अनुभव हुए होंगे। अगर कोई भी भक्त ये वन साइडेड हो गया तो उसको लात करना पड़ता है, कोई ना कोई तो उसके साथ झगड़ा करेंगे, समझाएंगे उसको। जब तक वो बदलता नहीं तब तक लोग उसको इकट्ठा रहेंगे, अलग अलग दिशा से आता रहे। वो ऐसे तरह तरह के लोगों से ये खा कर वो क्या है बदल जाता है धीरे धीरे कुछ सालों के बाद। और अभी 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, वो बदल गया, लेकिन हम जब उसको देखते हैं हमारे मन में क्या विचारधारा है, अरे आ गया अभी मालूम है इसके बारे में, वो वही व्यक्ति है। ऐसे हम लोगों को एक लेबल लगा देते हैं उनके माथे के ऊपर, लेकिन व्यक्ति बदलता है। इसको बोलते हैं नेकेड पेंचो परसेप्शन बोलते हैं इसको। एक गांव में एक पेंचो नाम का बच्चा था, छोटा बच्चा, लेकिन वो नंगा था छोटा बच्चा, अनेक लोग देखते थे उसको, खेलता था कूदता था, उन्होंने देखा है। लेकिन वो बड़ा होकर गांव छोड़कर शहर आया, लंदन गया, बैरिस्टर किया, ला करके भारत में वापस आकर एक हाईकोर्ट मैजिस्ट्रेट बन गया वो। तो गांव के लोगों को मालूम नहीं था, कोई जाकर बताया आपको मालूम है आपके पेंचो अभी हाईकोर्ट मैजिस्ट्रेट बन गया। वो लोग हंस पड़े, अरे वो कैसे बन सकता है, वो तो नंगा पेंचो है। ऐसे बोले नहीं, पहले नंगा होता हुआ होता शायद, छोटा बच्चा था लेकिन अभी बड़ा हो गया वो। तो लोग बोले हमको तो विश्वास नहीं, अगर हाईकोर्ट मैजिस्ट्रेट बन गया हो शायद उसको वेतन कुछ नहीं दे रहे होंगे, ऐसे बोला। इस तरह से हम इस दुनिया में रहते समय हम लोगों में भौतिक ऊंचाई नीचाई इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए, आलोचन विवेचन वगैरह करने से क्या होता है, समय की बर्बादी है। और इसमें आप देखेंगे और एक उदाहरण है, कभी कभी हम लोग इस्कान के लोग सोचते हैं ये हमारे गुरु भाई है इसलिए बहुत अच्छे हैं, ये हमारे गुरु भाई नहीं है दूसरे गुरु के शिष्य हैं इसलिए अच्छे नहीं है, इस तरह के लेबल लगाते हैं कभी। लेकिन बाद में देखेंगे आप कोई किसी और गुरु के शिष्य आपको बहुत मदद करता है आपके जीवन में, आप कठिन परिस्थिति में हो, आपको कुछ आपके मन की बात बोलकर कुछ एडवाइस लेना हो तो वो मदद करता। अभी बोलेंगे हे वो गुरु के शिष्य जो है ना सब लोग अच्छे हैं, सब लोग परिपक्व हैं, सब लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे, इस तरह हम लेबल लगाते, वो करेक्ट है कि नहीं? नहीं है। तो वो गुरु के शिष्य कोई हो सकता है जो अच्छा भी नहीं हो, करेक्ट ना, हो सकता है। जैसे एक बार पुणे से मुंबई मंदिर में एक भक्त गया, स्टूडेंट गया, तो वो प्रेरणा फेस्टिवल के लिए गया था वो मुंबई में, तो वापस लौट आया मुझे 2 पेज का लेटर लिखा मुझे, प्रभु जी मैं मुंबई मंदिर में गया था, इतना बुरा अनुभव मिला हमको उधर, मैं प्रोग्राम में अटेंड नहीं किया, रोते हुए वापस लौट आया, कारण क्या है, वो लोग कुछ बड़े पतेला में हलवा लेकर वो लोग आ रहे थे, तो दरवाजे पर के बीच में मैं खड़ा था, एक भक्त ने डांटा मुझे हट जा करके बोला उन्होंने। तो अभी भी मैं घर वापस लौट आया प्रभु जी पुणे, मेरे कान में गूंज रहा है हट जा करके। इस तरह का बुरा अनुभव हमारी किसी भी इस्कॉन मंदिर में हमको नहीं मिला, मैं कभी नहीं जाऊंगा मुंबई का मंदिर, ऐसे बोला। तो मैंने बोला, अभी मैंने लेटर लिखा उसको, बोला कि देखो तुम किसी को पहचानते नहीं हो यार, और वो लोग तो पतेला उठाकर लेके आ रहे हैं, उनको पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन उनको आगे लेके जाना है उसको प्रोग्राम प्रसाद सर्विंग के लिए, इसलिए हट जा करके बोला, बुरा मत मानो, और एक बार तुम जाओ तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ, ऐसे बोला मैंने। तो दूसरी बार हो गया, मैं पहले से फोन करके एक भक्त को बोल दिया इसको ऐसे स्वागत करना प्रधानमंत्री को स्वागत करने के बराबर, थोड़ा इसका बुरा अनुभव हुआ है, एक्सपीरियंस है इसे, थोड़ा संभालो इसको। वो भक्त बोला साहब मैं देख लूंगा, आप चिंता मत करना, आपने बोल दिया प्रभु जी हम देख लेंगे। तो ये गया उसको राजभोग प्रसाद के लाया उसको प्रेम से आलिंगन करके बात करके उसको पैट करके हाथ में अनेक गिफ्ट्स देकर, इतना गिफ्ट दे दिया उन्होंने, वो पकड़ नहीं पाया हाथ में, उसको वापस लौटा है। पहले तो दो पेज का मेल लिखा, अभी चार पेज का मेल लिखा। वाह मेल में प्रभु जी क्या बोलूं, इतना अनुभव हुआ मेरे शब्दों में, मैं समझा नहीं पा रहा हूं आपको, आपको खुद ही जाना पड़ेगा, आपको अनुभव चाहिए। तो इसको पेंडुलम बोलते हैं, पेंडुलम मालूम है आपको? पेंडुलम क्या करता है, एक तो एकदम क्रिटिसाइज करना और एकदम प्रशंसा करना। तो इसको बोलते हैं असति अभिनिवेशतः, असत्य विषयों में लोग अभिनिविष्ट हो जाते हैं इस दुनिया में। ये लोग भगवान का चिंतन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका मन पेंडुलम जैसा स्विंगिंग मोड बोलते हैं इसको। हम लोग क्या करना चाहिए हमारे जीवन में, अगर किसी के अंदर भी कुछ देखना हो, कंपार्टमेंट जैसे देखना चाहिए। पहले एक कंपार्टमेंट था वो ऐसा था, पहले अभी के कंपार्टमेंट में ऐसा बदल चुका है, परिवर्तन है, ऐसा है। तो केस टू केस देखना चाहिए और टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार हमें निर्णय लेना चाहिए। और जनरल साधारण तरीके से देखा जाए तो हम हर एक जीव को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब क्या है, अगर किसी के अंदर दोष भी दिख रहा हो फिर भी हमें अच्छा ही देखना चाहिए, क्योंकि जिस दोष हमें दिख रहा है वो सही रूप से क्या है हमें मालूम नहीं है। अभी उदाहरण के लिए कोई भक्त है, अगर तुलसी आरती शुरू होता है सुबह, वो निकल कर चला गया वो, और जपा के बीच में आता है, क्यों आता है? कभी भी हमें शंका होता है तो हम उनको पूछताछ करते हैं, प्रभु जी आप बीच में चले गए क्या हो गया? वो बोलता है क्या बोलूं प्रभु, आज डिसेंट्री था मेरा, डिसेंट्री मालूम है आपको, तो भागना पड़ा मुझे, बाथरूम भागना पड़ा है, इसलिए मैं गया बीच में, हो सकता है। तो अगर हम उसको पूछेंगे नहीं तो हमें, हम एक तरह का माप लगाते हैं, हो सकता है बीच में क्यों गया, जाकर सो गया होगा, वो भी हो सकता है, लेकिन क्या करना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए। पूछे बिना हम अनुमान नहीं लगाना चाहिए किसी भी जीव में दोष देखकर। इस तरह शास्त्र बताते हैं कि आप प्रशंसा और निंदा इस तरह की दुनिया में मत करो। अभी हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है, तो लक्ष्मी जी क्यों निंदा कर रही है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को प्रशंसा कर रही है, ये इसका कारण क्या है? भगवान से तुलना करके भगवान से संबंधित प्रशंसा निंदा शास्त्र भी करते हैं। उदाहरण के लिए यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचन सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सतिदावतो बहिर्। इस श्लोक में बोला गया है हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, अरे कोई हरि का भक्त नहीं है, क्या अच्छा गुण उसमें हो सकता है। इस तरह ये क्रिटिसाइज किया जा रहा है भगवान से संबंधित है। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधीनां देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसंगेश्वसत्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यनपि न पश्यति। इधर भी विवेचन किया जा रहा है कर्मी लोगों का, जो लोग हजारों विषयों के बारे में बातचीत करते हैं, बिजनेस के बारे में, कोर्ट केस के बारे में, काम धंधा के बारे में, पैसा इकट्ठा करने के बारे में, लेकिन भगवान के बारे में बातचीत नहीं करते हैं। इस तरह एक आलोचना कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस तरह के आलोचन भगवान से संबंधित बोला जा सकता है। इसलिए बक्सन ठाकुर बोलते हैं कंपेयर ए लिबरेटेड सोल टू अ कंडीशन सोल, एक मुक्तात्मा को बद्ध जीव से तुलना करो, बद्ध जीवों के बीच में पक्षपात मत करो, सब जीवों को हरे कृष्ण मंत्र गाने में लगाओ, भक्ति में लगाओ, ये सब को समान रूप से देखो। किसके अंदर भी भक्ति हो, श्रद्धा हो, उसको प्रेम करो, उसको प्रोत्साहन दो। इस तरह वो बताते हैं कि बद्ध जीवों के अंदर क्लासिफिकेशन मत करो, ऐसे बताते हैं। बद्ध जीव को मुक्त जीव से देखो, क्योंकि बद्ध जीव के स्वभाव भी बदलते जाते हैं धीरे धीरे धीरे, जन्म के बाद जन्म बदलते जाते हैं ऐसे। इसलिए इधर लक्ष्मी जी तुलना कर रही है, अभी दुर्वासा मुनि के अंदर कुछ त्रुटि देख रही है, ब्रह्मा जी वाग देवी नाम के अपने ही बेटी के पीछे आकर्षित हुए, ऐसे बोलते हैं। इस तरह अलग इंद्र जो है वो तो अपने राज्य को खो बैठा असुरों के हाथ में, डरपोक है, भाग जाता है, कभी भी उसको इनसिक्योरिटी होता है इंद्र को। इस तरह इंद्र को रिजेक्ट किया उन्होंने, इंद्र, ब्रह्मा, दुर्वासमुनि, आगे जाकर जैसे शुक्राचार्य बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमेशा उनके आंखें पैसे के ऊपर ध्यान है उनका, है कि मेरा वेतन क्या होगा अगर बलि महाराज का राज्य छूट जाएगा तो, अपने बारे में सोचते हैं। इस तरह अलग अलग लोगों में उन्होंने देखा कि कोई अनवद्य आत्मा नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है नारायण, जिनको बोला जा सकता है कि ये अनवद्य आत्मा, ये एकदम शुद्ध है, और जिनमें किसी भी तरह का कलमश नहीं है। हाँ, नारायण के भी अंदर एक त्रुटि है, क्या है वो मेरी ओर मुड़कर देखते नहीं, यही उनके अंदर त्रुटि है, बाकी कुछ नहीं है। जो भी हो, अगर नारायण मुझे स्वीकारे या ना स्वीकारे, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, मैं उनके पद कमलों में रहूंगी और उनकी सेवा करूंगी, इस तरह से लक्ष्मी सोच रही है। देखिए भागवत के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 21वां श्लोक है, 3:15:21, एक सुंदर श्लोक है। श्री रूपिणी क्वणयति चरणारविंदम लीलांबुजेन हरिसद्मणिमुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिक कुड्य उपेत हेमनि सम्मार्जतीव यदनुग्रहणेन्द्र यत्नः। इधर बोला जा रहा है कि अनेक देवी देवता, ब्रह्मा से लेकर इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, सब लोग अपने हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी की ओर मुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माता, आपकी कारुण्य कटाक्ष हमारे ऊपर डालो ताकि सब तरह की समृद्धि हमें प्राप्त हो। क्योंकि आपने सुना होगा अष्टलक्ष्मी के बारे में, किसी को संतान नहीं है, संतान लक्ष्मी संतान दे सकती है, किसी को धन चाहिए, धनलक्ष्मी, ताकि धनलक्ष्मी ऐसे आंखें डालती है किसी के ऊपर, ऐसे आंखों से दृष्टिपात करती है करके उनका पैसा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कोई गरीब से गरीब व्यक्ति कभी अमीर से अमीर बन जाता है, इसलिए कुछ कुछ लोग अपने खिड़की खोल कर रखते हैं, ऊपर भी खोल कर रखते हैं कि लक्ष्मी आ जाए, ऐसे तो लक्ष्मी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, नजर पड़े। जैसे जब भगवान कृष्ण जिसको कह रहे थे ना, वो पोहे को जो सुदामा ने दिया था उनको, तभी एक मुष्टिक आया, दूसरा मुष्टिक आया, तो रुक्मिणी जी ने भगवान के हाथ पकड़ा, उन्होंने बोला कि भगवान को अगर आप सब खा लेंगे तो हम लोगों को क्या बचेगा, इसलिए हम हमारे लिए भी कुछ है, आप रखिए, ऐसे बोला। ऐसे और इस तरह बोलने के बाद अपने सहेलियों के पास मुड़कर रुक्मिणी ने बोला कि मैं भगवान को क्यों रोक दिया मालूम है, अगर ये खाएंगे तो इनके एकदम मुलायम नरम पेट जो है ये खराब हो जाएगा, है इसलिए मैंने इनको खाने नहीं दिया करके उन्होंने ले लिया। लेकिन भगवान को उन्होंने और एक कारण बताया, आपने दो मुष्टि खाया इसके कारण मुझे सुदामा के लिए बहुत बड़ा महल उनको प्रदान करना पड़ेगा, है उसके साथ साथ सैकड़ों नौकर चाकर, तो अगर आप खाते रहेंगे तो मुझे उनके घर में जाकर हमेशा के लिए रहना पड़ेगा मुझे, है इसलिए आप इतना मत खाओ, ऐसे बोलती है। इसका मतलब है भगवान की तृप्ति और लक्ष्मी की दृष्टि दोनों का संबंध है। When Krishna smiles, nature smiles. When Krishna is unhappy, nature is unhappy. जब कृष्ण के चेहरे में मुस्कुराहट आता है तभी प्रकृति में भी हरियाली बढ़ जाती है, रंग बिरंगे फूल उगते हैं, पेड़ों में फल उत्पन्न होते हैं, नदियों में पानी भर के आता है, समुद्रों में नवरत्न उत्पन्न होते हैं, और गाय के स्तनों में दूध भर जाती है, सब लोग पति पत्नी बहुत खुशी से रहते हैं, पति पत्नी बच्चे, प्रकृति में बहुत सुंदरता दिखती है। इस तरह कुंती महारानी बोलती है, इमे जन पदा सुवृद्धा सुपक्व औषधि वीरुड़ वना दृणति उदनवंतो हेदंते तव वीक्षित, तव वीक्षित का मतलब आपके दृष्टिपात से। तो कृष्ण के तृप्ति से लक्ष्मी जी भक्तों की सेवा करती है, समृद्धि फैलाती है इस तरह से। जैसे प्रभुपाद जी से कृष्ण जब तृप्त हुए, सारे दुनिया में ऐसे सैकड़ों मंदिरों को खोलने में कृष्ण ने मदद किया लक्ष्मी के द्वारा, इस तरह हम इसको देख सकते हैं। इस तरह इस श्लोक में बोला गया कि सब देवता याचना करते हैं लक्ष्मी से, हे लक्ष्मी तुम दूसरी ओर मुड़ती हो, हमारी ओर मुड़कर देखो, आपकी दृष्टि डाला हमारे ऊपर, ऐसे वो याचना करते हैं। लेकिन वो लक्ष्मी क्या करती है, विष्णु की ओर मुड़कर देखती है और विष्णु विष्णु के पाद संवाहन करती है वो अनंत शेष में बैठकर। और ऐसे लक्ष्मी के बारे में वर्णन है उस श्लोक में, श्री रूपिणी क्वणयती चरणारविंदम, अपने कमल जैसे कोमल पांव में वो नूपुर पहनी है लक्ष्मी, और जब चलती है ऐसे आवाज आता है क्वणयती। श्री रूपिणी, श्री का मतलब है लक्ष्मी, रूपिणी का मतलब है एकदम खूबसूरत लक्ष्मी, ने कपड़े भी पहने हैं, सिल्क कपड़े पहने हैं और विविध आभूषणों को पहनी है, और एक हाथ में एक अंबुज का मतलब है कमल, कमल को लेकर ऐसे गोल गोल घुमा रही है। लेकिन उसके दूसरे हाथ में एक झाड़ू है, ये क्या कॉम्बिनेशन है, एक हाथ में कमल है, दूसरे हाथ में झाड़ू है। अगर कोई रईस खानदान में जाने में लड़की एकदम साफ साफ कपड़े पहने हैं, आभूषण पहने हैं, हाथ में एक कमल लेकर गोल घुमा रही है अपने सखियों के साथ है, लेकिन अगर ये झाड़ू लेगी अपने हाथ में, उसके पास तो सैकड़ों नौकर चाकर है। लेकिन ये लक्ष्मी धनी स्त्री नहीं है, लेकिन ये धन का मूर्तिमान स्वरूप है लक्ष्मी खुद ही। लेकिन वो झाड़ू लेकर भगवत धाम में, वैकुंठ धाम में मार रही है, उधर जमीन जो है वो आईने के बराबर चमक रहा है, एक धनिक मात्र भी धूल नहीं है उधर, फिर भी वो झाड़ू मार रही है। क्यों? क्योंकि विष्णु की मुस्कान को देखने के लिए। जब विष्णु देखते हैं कि लक्ष्मी झाड़ू मार रही है, तो उनके चेहरे में एक मुस्कान दिखाई देता है, एक आनंद का अनुभव, उनको आनंद देने के लिए वह सेवा कर रही है। इस तरह वर्णन किया गया है तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय, बहुत सुंदर वर्णन। लक्ष्मी जाती है, उधर एक पुष्करणी है जिसमें कमल उगते हैं, तो उस सीढ़ी में नीचे उतर कर अपने चेहरे को पानी से धोकर, उसके बाद तिलक तिलक पहनकर विष्णु के सामने आने के लिए वो तैयार होने के लिए जाती है उस तालाब में। लेकिन तालाब में ऐसे चेहरे को पानी डालते समय देखती है उसका चेहरा एकदम उसमें नीलम आ गया है, सोचती है कि मैं कैसे नीली बन गई, मैं तो एकदम सफेद रंग का हूँ, गोरे रंग का हूँ, वो नीलिमा कैसे आई, क्योंकि उस तालाब में नीले कमल है, वो नीले कमल के कारण उसके चेहरा भी नीला दिखता है। इस तरह धोकर तिलक पहनकर बगीचे में आती है, जिधर बैठकर वो अपने सखियों के साथ वो विविध फूलों को लेकर भगवान के लिए हार बनाती है ऐसे, और हार बनाते समय गीत गा रही है लक्ष्मी उस समय भी। इस तरह कभी कभी एक झूला में बैठकर झूलती है, लेकिन झूलने के साथ साथ भगवान नारायण की गाना भी गाती है, उनकी गुणगान करते हुए गीत भी गाती है। देखिए इस दुनिया में जब हम लोग झूला झूलते हैं, उस मजे में हम भगवान की गाना भूल जाते हैं। इस दुनिया में जब हम मजा कुछ आनंद लूटते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन वो लक्ष्मी जी वैकुंठ में आनंद लूटते समय भी वो भगवान का स्मरण करती है उस समय भी, वो भूलती नहीं है। इसलिए लक्ष्मी जो है उनके हृदय में नारायण के लिए जो प्रेम है, भक्ति है, वो समुद्र के बराबर है। उसको महाभाव बोलते हैं, महाभाव। जीवों के अंदर सिर्फ भाव है, लेकिन लक्ष्मी के अंदर महाभाव है इसे। तो इसलिए ईशानाम जगतोस्य वेंकटपतेर विष्णु परम प्रेयसी तद भक्षस्तर नित्यवास रसिकां तक्षांति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणिपल्लव युगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्वलां भगवतीं वंदे जगन्मातरम। वो लक्ष्मी के बारे में वर्णन है श्लोक में, लक्ष्मी बैठी है एक कमल के ऊपर और पद्मासन में बैठी है, हाथ में भी उसके पास कमल का फूल है और कमल का हार भी पहना है। और ऐसे लक्ष्मी भगवान नारायण भगवान विष्णु के धर्मपत्नी है और वो सब जीवों को एक वात्सल्यमय आंखों से देखती है वो है? और सब जीवों के जगन माता है वो लक्ष्मी, और सब जीवों को सिखाती है विष्णु की भक्ति कैसे करना है? भक्ति में कैसे जुड़ना। और वो विष्णु से भी ज्यादा कृपालु है जीवों को, बद्ध जीवों को ऊपर उठाने में है? और भगवान विष्णु के हृदय में रहते हुए एक सोने के बाल के रूप में है वो श्रीवत्स, रहते हुए विष्णु के चित्त को भी उन्होंने पिघल दिया है, बहुत एकदम मुलायम बना दिया है उन्होंने। ऐसे लक्ष्मी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, इस तरह प्रार्थना है। तो ये इस तरह की लक्ष्मी सब जीवों के लीडर है, मास्टर है, सबको सिखाती है। लेकिन उस लक्ष्मी का भी स्रोत्र कौन है? श्रीमती राधा रानी है। ये पुराणों में जैसे पद्म पुराण से श्लोक कोट करते हैं कविराज गोस्वामी, इसमें चैत्र चरितामृत में, देवी लक्ष्मी मयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मी मयी सर्वा कांति सम्मोहिनी परा। इस तरह अनेक श्लोक कोट करते हैं पद्म पुराण से विष्णु पुराण से, जो राधिका पर देवता, राधा रानी जो है ये सब लक्ष्मियों का वो स्वामिनी है, सब लक्ष्मी इनसे ही निकलते हैं राधा जी से। तो लक्ष्मी सीता इस तरह के एक्सपेंशन जो द्वारका के रानियां ये सब राधा रानी से निकलते हैं। लेकिन लक्ष्मी को पूजा करने के लिए आती हैं कौन? जैसे जैसे पार्वती और सची और सरस्वती ये सब लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन लक्ष्मी खुद राधा रानी के सामने देखा जाए, राधा रानी लक्ष्मी का भी स्रोत्र है। गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। तो ये राधा रानी के बारे में बोला जाता है कि कांता शिरोमणि का मतलब है, कांता का मतलब है लक्ष्मियां, शिरोमणि का मतलब है लीडर। ये लक्ष्मियों में भी ये उनके लिए भी लीडर है, स्रोत्र है, ऐसे बताया है राधा रानी के बारे में। तो एक शास्त्र में मर्म दिया गया है कि अगर हम लोग भक्ति में आगे बढ़ना हो, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक फूल लेकर आप राधा जी के पास दो और बोलो कि हे माता आप अपने कृष्ण को इस फूल को चढ़ाओ ताकि कृष्ण ये फूल को स्वीकारे, क्योंकि मेरे अंदर भक्ति भावना नहीं है लेकिन आपके अंदर गहरा भक्ति है। इस तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं राधा जी को हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो आप लोग देखेंगे राधा जी सीता जी लक्ष्मी जी इनके हाथ में क्या है? ये कमल का फूल है। लेकिन दुर्गा के हाथ में क्या है? हाँ त्रिशूल है। क्यों एक के हाथ में त्रिशूल है एक के हाथ में कमल का फूल है? कारण है उसका, क्योंकि राधा जी सीता जी लक्ष्मी जी अंतरंग शक्ति है हा? लेकिन दुर्गा जी बहिरंग शक्ति है। अंतरंग शक्ति आग के बराबर है, बहिरंग शक्ति धुआं के बराबर है। चूल्हा में आपने देखा होगा, चूल्हा में आप आग जलाते हो तभी धुआं भी निकलता है कि नहीं? लेकिन शुरुआत में बहुत धुआं निकलता है, पहले धुआं से कुछ लाभ होता है आपको? कुछ लाभ नहीं है। धुआं से क्या होता है? वो नाक के अंदर, कान के, नाक के अंदर, आंखों के अंदर चला जाता है और आंसू निकलता है। तो आप क्या करते हो उस समय? एक लंबा एक राड लेकर करके आप हवा चलाते हो तो उससे क्या होता है? वो धुआं खत्म हो जाता है, आग जलता है चित्र। तो वो जो क्या बोलते हैं उसको, एक लंबा राड होता है ना उसको फूंकनी, वो फूंकनी को आप किधर डालते हो? धुआं के ऊपर डालते हो नहीं तो आग के ऊपर डालते हो? आग के ऊपर डालना चाहिए। अगर धुआं के ऊपर डालकर फूफू करो पूरा धुआं फैल जाएगा कमरे में, आपको ही तकलीफ नहीं सबको तकलीफ। इसलिए धुआं का मतलब है भौतिक जीवन, आग का मतलब है आध्यात्मिक जीवन। जो लोग भौतिक जीवन को ठीक करने के लिए परिश्रम करते जाते हैं भगवान को बोलकर, वो लोग धुआं फैला रहे हैं सारे कमरे में, खुद को भी तकलीफ दूसरों को भी तकलीफ। इस तरह। लेकिन जो लोग फुंकनी को लेकर सीधा आग के अंदर रखकर करके, उसका मतलब है सीधा हमें भगवत धाम में ध्यान देना चाहिए। कैसे हम वैकुंठ भगवत धाम लौट चले, और भगवत धाम से संबंधित चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जैसे हरिनाम जपना, प्रसाद पाना, भागवत गीता भागवत पढ़ना सुनना, और इस तरह से भक्तों के संगति में आना, इस तरह की चीजों को करना किसके बराबर है? फूंकने को सीधा आग में डालकर करने के बराबर है। ऐसे करेंगे आग जिस तरह बढ़ जाता है, इस तरह हमारे आध्यात्मिक शक्ति जब बढ़ जाएगा, हमारे जीवन में जो भी निराशा, किसी भी तरह का मनमुटाव, किसी भी तरह का अपक्वता भक्ति में, ये सब मिट जाएगा, पूर्ण रूपेण मिट जाएगा। वो जितना मिटता जाएगा उतना हमें आनंद का अनुभव होगा, हमें खुद भी इस तरह है। इसलिए ये हम लोग आध्यात्मिक देवी को छोड़कर हम लोग आ गए हैं एक भौतिक देवी के आश्रय में, तो इसलिए हमको त्रिशूल प्राप्त हो रहा है इस दुनिया में, त्रिविध ताप जिसको लेकर हम संभाल नहीं पा रहे हैं, बहुत विध यातनाओं को हमें स्वीकारना पड़ता है, इसलिए ये बहुत आवश्यक चीज है। देखिए एक पंडरपुर नाम का एक स्थान है महाराष्ट्र में, मालूम है आपको, उधर एक परिवार है, वो लोग वारकारी संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के परिवार है, उनका एक बेटी हुई छोटी बेटी, उन्होंने सोचा कि पंडरपुर में अच्छा स्कूल कॉलेज नहीं है, उनको पुणे में भेजो। ठीक है, उन्होंने पुणे मुंबई भेजा उनको, तो बेटी आ गए, लेकिन पुणे आई, उसके बाद उनके माता पिता ने बोला कि मुंबई जाओ, मुंबई में तुम्हारी मौसी रहती है, उधर जाकर रहो, तो मौसी के पास रहती थी वो, लेकिन मौसी को ही वो मामा करके पुकारती थी, मौसी बोलते थे अरे मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ है पंडरपुर में, ऐसे बोलती थी। लेकिन मौसी बोलते थे कि अरे छुट्टी के समय कम से कम जाओ घर समर वेकेशन के लिए, लेकिन ये बोलती थी मुंबई में मुझे अच्छा लगता है, बहुत फ्रेंड्स हैं, घूमते हैं घामते हैं, ऐसे वो मेटरिस्टिक हो गई वो मुंबई में आकर, एकदम क्या बोलते हैं भौतिक जीवन में घुस गई अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो बोले कि नहीं मुझे इधर ही अच्छा लगता है, उधर जाना गांव जाना अच्छा नहीं लगता है। तो उसके माँ बाप उसको बुलाते थे, कभी कभी जाती थी, और माता पिता उसके साथ बैठकर बात करते थे, लेकिन दो दिन के बाद निकल जाती थी वो ऐसे। तो वो परिवार वालों ने बोल रहा था कि हम लोगों ने इसको मौसी के घर में भेजा, ये मौसी और मौसा को इस सोच रही कि मेरे माता पिता हैं, ऐसे सोच लिया इन्होंने, उधर ही रहते हैं। तो हमने सोचा कि जैसे हम लोग भगवत नाम को छोड़कर, भगवत नाम पंडरपुर जैसा है, और ये भौतिक दुनिया मुंबई जैसा है, और इधर मौसा कौन है? शिव जी है मौसा, और मौसी कौन है? हाँ दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी को ही हमने माता मान लिया इधर, दुर्गा और शिव जी को पकड़कर हम मौसी मौसा के साथ रहना चाहते हैं, और एकदम मेटलिस्टिक हो गए इधर आकर, इतना भौतिकवादी बन गए। और हमको वापस पंडरपुर लौटाने के लिए संदेश आता है गीता भागवत के द्वारा, आओ इधर आओ, भगवत नाम बुला रहे हैं भगवान हमको। तो भगवान बोल रहे हैं कि अरे असली माँ बाप को याद करो, उधर आ पहुंचो उधर। तो इस तरह है लक्ष्मी, लक्ष्मी का दो रूप है आप देखेंगे, एक नाम है लक्ष्मी का चंचला है, चंचला का मतलब क्या है? लक्ष्मी के कारण 14 तरह के तकलीफ आपको प्राप्त हो सकते हैं, सातवें स्कंद में अवधूत ब्राह्मण बोल रहे हैं 14 तरह के तकलीफ, जैसे लक्ष्मी होने से किसी से लोगों का खून हो गया है, मार दिया किसी ने उसको, लक्ष्मी से चिंता होता है, किसी के पास चाबी का गुच्छा है, सो रहा है, अचानक उसको लग रहा है कि कोई दरवाजा कर रहा है, क्या चोर लोग आ गए हैं, ऐसे लगता है उसको। इस तरह 14 तरह के तकलीफ बताया गया है लक्ष्मी से। तो जो लक्ष्मी भगवान के पदकमलों में हमेशा के लिए आश्रित रहती है, वो ही लक्ष्मी इस दुनिया में आकर चंचला बन जाती है। तो प्रभु जी बोलते हैं कि क्राइंग सीता इन द हैंड्स ऑफ रावणा कैनॉट मेक रावणा हैप्पी, बट अ स्माइलिंग सीता स्टैंडिंग विद राम एंड लक्ष्मण कैन मेक एवरीबडी हैप्पी, ऐसे बोलते हैं प्रभु जी। जो रोने वाले सीता जो रावण के हाथ में है वो किसी को खुशी नहीं कर सकती है, लेकिन मुस्कुराने वाली सीता राम के पास जो कड़ी है वो सारे दुनिया के जीवों को आनंद दे सकती है। इसका मतलब क्या है? भौतिक कार्यकलापों में क्रियाशील होने वाले लोगों के पास जो लक्ष्मी है वो उनको तकलीफ ही तकलीफ लाती है, लेकिन वही लक्ष्मी जब भक्तों के हाथ में आकर भगवान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जैसे राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण इनकी सेवा में लगती है वो भी बहुत आनंदित हो जाती है, क्योंकि वो तो भगवान के पदकमलों में आश्रित रहना उसके लिए स्वाभाविक है। इस तरह हम लोग लक्ष्मी ही नहीं, हमारे श्वास, हमारे प्राण, हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे इंद्रिय और हमारे पास जो भी हो सब कुछ चीज भगवान की सेवा में लगाकर हम भी शुद्ध बन सकते हैं। और खास करके दैवी प्रकृतिम आश्रितम जो बोलते हैं प्रभुपाद जी, महात्मानस्तमाम पार्थ दैवी प्रकृतिम आश्रितम, हर गौड़ीय भक्त को प्रार्थना करना चाहिए कि हे राधा रानी जगन माता आप हमारे चित्त को शुद्ध कराओ, आप हमें कृष्ण के आश्रय में प्रदान कृष्ण के आश्रय में हमको डालो ताकि हम भगवान से बहिर्मुख ना रहे, हमेशा हम भक्ति में उन्मुख होकर प्रेम से गंभीरता से भक्ति में जुड़कर रहे और हमारे भक्ति भावना का वर्धन होते रहे। और जिस तरह की एक माता अपने बच्चे को संभाल कर पोषण देती हुई रखती है, इस तरह आप भी हमको भक्ति का पोषण कराकर हमें एक सुरक्षित स्थिति में रखिए ताकि हम इसी जन्म में दिव्य प्रेम को हमारे हृदय में जागृत कर सके। इस तरह हमें प्रार्थना करना चाहिए, इसे प्रभुपाद जी उनके लेक्चर में बोलते हैं। अभी समय हो गया है, मैंने समय को एक्सीड कर दिया, आज द्वादशी का दिन है, सब भक्त लोग भूखे हैं, आपको कृष्ण प्रसाद के रूप में आने वाले कृष्ण को कृष्ण की संगति से आपको विरह में नहीं रखूंगा मैं आपको, है? आपके साथ पाइए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंदा की। थैंक यू वेरी मच।
हरे कृष्ण। तो हम राधे श्याम भाऊ जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, बहुत ही भक्तिमय उत्साहवर्धक बहुत ही शिक्षाप्रद करने वाला प्रवचन। और आप इसे कितने भक्त लोग चाहेंगे कि प्रभु जी का संग हमें थोड़ा और फ्रिक्वेंटली मिले, तो हम प्रभु जी से निवेदन करेंगे, ऐसे कह रहे हैं दिल्ली में साल में एक बार ही आते हैं, लेकिन पंजाबी भाग अगर ज़्यादा आ सके तो हमको बहुत बहुत लाभ होगा। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इट वॉज अ वंडरफुल लेक्चर एंड वॉज सो स्वीट, लाइक टू हियर इट अगेन एंड अगेन। सो इसके साथ ही प्रभु की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।